हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 7। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अख्यांतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रातरः न परः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेशी। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुन्दीनतारणम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। अत्यंत ही सुंदर रीति से गजेंद्र अपने विकट संकट की स्थिति में भगवान को स्तुति कर रहे हैं और वास्तव में हमें सिखा रहे हैं कि जब किसी जीव के ऊपर विकट परिस्थिति आती है, दुखद स्थिति आती है, तो उन्हें किस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो जैसे श्लोक नंबर 6 में गजेंद्र ने हमें बताया, नायस्य देवा ऋषयः परम विदु जन्तु पुनको हतिगन्तु मीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टता दुरत्ययानु क्रमण सुमानमावतु। वे भगवान को कहते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य करते हो, इतना आकर्षक वेश भुजा से ढके रहते हो तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से रंगमंच के ऊपर जिस प्रकार एक कलाकार कार्य करता है, उसी प्रकार आपके जन कर्म पद स्वरूप, आपकी लीलाओं, आपके गुण के विषय में जानना अत्यंत कठिन है। नयस्य देवा ऋषय पद, जो देवता है बड़े बड़े वो भी नहीं जान सकते आपको, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके विषय में जान नहीं सकते। दुरत्य नो क्रमण, आपके कार्य जो है वो अत्यंत ही गुप्त हैं, और ऐसे भगवान की मैं शरण में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वही भगवान मेरी रक्षा करें जिन्हें कोई समझ नहीं सकता, जिन्हें कोई देख नहीं सकता। तो उसी के विषय में आगे कहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उन्हें समझा जा नहीं सकता। कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं, कुछ योग्यताएं ऐसी हैं जिससे भगवान को समझा जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है, जिससे भगवान को देखा जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, तो उसे अपने अंदर ये सब गुण अर्जित करने चाहिए। अगर नहीं करता है वो सारे गुण अर्जित, तो देवताओं और ऋषियों के लिए भी भगवान को समझना अत्यंत कठिन है। फिर ये जो जंतु है, ऐसे बताया जंतु पुनः को आते, फिर ये जंतु अर्थात ये मनुष्य जो केवल जानवरों की तरह जीता है, वो भला भगवान को क्या समझेगा। तो श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, दृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवा चरन्त्यलोक व्रतमावरणं वने भूतात्म भूता सुहृदा समेकते। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संघा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमावरणं वने भूतात्म भूता सुहृदा समेकते। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमावरणं वने भूतात्म भूता सुहृदा समेकते। शब्दार्थ, दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम। दिदृक्षयो यानी भगवान को देखने की इच्छुक, जो भगवान की देखने की इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं, यस्य पदं जिसके पदम यानी चरण कमल सुमंगलम अर्थात कल्याणकारी है। विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवा, विमुक्त संज्ञा मतलब भौतिक दशाओं से पूरी तरह से मुक्त हो मोनाया यानी मुनिगण और सुसाधव यानी आध्यात्मिक चेतना में बहुत बड़े चढ़े। चरंती लोक, चरंती मतलब अभ्यास करते हैं, लोक का व्रत ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास के व्रत। आवरणम, अवरणम का मतलब है बिना किसी त्रुटि के, कंटिन्यूस जो अपने नियम को पालन करते हैं ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास के जो नियम है उनको दृढ़ता से पालन करते हैं, अवरणम बिना किसी त्रुटि के। वने, वो वन में जाकर तपस्या करते हैं। भूतात्म भूता, जो समस्त जीवों के प्रति सम्मान भाव रखते हैं। सुहृद, जो सबों के मित्र हैं। स, वही भगवान। मैं यानी मेरी, मेरा गति गंतव्य है। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य हों। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं, वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिताः समदर्शिनः, वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं, यह समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव ना बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है, जैसा कि विमुक्त संघ शब्द से ही सूचित होता है। उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वह ऐसे भक्त की शरण में जाए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है जिसमें गजेंद्र उन व्यक्तियों की क्वालिटीज बता रहे हैं जो भगवान के दर्शन पाने के योग्य हो जाते हैं, जो भगवान के नाम गुण लीलाओं को समझने के योग्य हो जाते हैं। वे कहते हैं पहली क्वालिटी, भगवान को कौन समझ सकता है, पहली क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए दिदृक्षवो। दिदृक्षवो मतलब देखने की इच्छा, जो सदैव भगवान को देखने के लिए बेचैन हो, हृदय के अंदर उत्कंठा हो, उसके मन में केवल एक ही इच्छा हो कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं जीव केवल इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर से शरीर को ही देखने की इच्छा करते हैं। वे कहते हैं यस्य पदम सुमंगलम, भगवान की विशेषता, वो भगवान जिसको देखने के वो इच्छुक होते हैं वो कैसे हैं, यस्य पदम सुमंगलम, उनके पदम, उनके धाम, उनका रूप, उनकी लीलाएं सुमंगल हैं। जैसे संसार में हम जिसको भी देखने की इच्छा करते हैं उसको देखकर हमारा कोई कल्याण नहीं। आज हम देखते हैं अगर किसी का मोबाइल उठा के देखे उनकी गैलरी में न जाने कितनी सेल्फीज होते हैं, फोटोज होते हैं इसके उसके, फेसबुक पे देखो कभी क्या दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब देखकर किसी का कल्याण नहीं होता। और सब देखिए, छोड़ दीजिए, अगर कोई देवताओं को भी देखता है तो भले उनका शरीर जो है वो मनुष्यों से ज्यादा महत्व है। उनके शरीर में वायु तत्व अधिक है, अग्नि तत्व अधिक है, इसलिए वो आकाश में विचरण कर सकते हैं, हवा में टिक सकते हैं। पर कुछ भी हो, उनको देखकर भी वो जीव का मंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर भी एटलीस्ट भौतिक वस्तुओं से ही मिलकर बना। भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता यस्य पदम सुमंगलम, जब तक कि उसका संबंध कृष्ण से न हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, क्योंकि इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं से जो मिलकर शरीर बना है वो जड़ ही रहता है। उसको दिदृक्षवो, उसको देखने की लालसा करके तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला, परंतु भगवान सच्चित आनंद है, उनका चिन्मयी शरीर है, अलौकिक शरीर है, जैसे दीपक से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश आता तेल और बाती पर आश्रित होता है ना। अगर दीपक में स्वयं से प्रकाश नहीं होता है, तेल और बाती के कारण उसके अंदर प्रकाश आता है। लेकिन अगर हम भौतिक दृष्टि से थोड़ा सोचें तो सूर्य का प्रकाश किसी तेल और पेट्रोल पर आश्रित नहीं है ना। हम उन्हें सूर्य तो स्वयं प्रकाशमान है, परंतु एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्य हो। भगवान तो सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाश देने वाले हैं, परंतु भगवान स्वयं, भगवान के लोक में जो शरीर है वो सच्चित आनंद घन रहेंगे। भगवान में कोई भी, उनके शरीर में कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है, और वो जो भगवान का धाम प्राप्त कर लेते हैं जी, उनको पास भी ये भौतिक शरीर नहीं होता, वो उनका स्वरूप होता है, उसमें कभी कोई रोग नहीं आता। इस भौतिक जगत में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उस आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं होती हैं। वो उनका जो शरीर होता है उसमें कभी बुढ़ापा नहीं होता है, उनमें कोई कष्ट नहीं आता है, उसमें कोई रोग नहीं आता। और भगवान आद्यम पुराण पुरुषम नवयवनम च, वो भले ही सबसे आदि जीव हैं, सबसे पुराने हैं, परंतु नवयवनम, नवयवनम का मतलब क्या होता है, जैसे आज ही कृष्ण ने जवानी में प्रवेश किया हो। मतलब यौवन, नवयौवन का मतलब ये नहीं पूरा जवान, यानी किशोर अवस्था और यौवन अवस्था के बीच की जो अवस्था, बस अभी अभी यौवन अवस्था की दहलीज पर कदम रखते हैं, पूरा यौवन नहीं। तो नवयौवन और भगवान का धाम, रूप गुण लीलाएं, ये सब इतनी सुंदर है। भगवान का स्वरूप देखना, उनको देखने की इच्छा जो करते हैं, इतना मंगलमयी है कि यदि कोई केवल उनका उच्चारण भी करे। हम जब भगवान के रूप के विषय में, भगवान के गुणों के विषय में, भगवान के नाम के विषय में, भगवान के धाम के विषय में, भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में केवल बात भी करते हैं ना, बोलते भी हैं, केवल श्रवण भी करते हैं, तो भी हमारा मंगल होता है, हमारा कल्याण होता है, उसी में हमारा वास्तविक मंगल है। तो सोचिए, जिसके कारण केवल, जिसके केवल सुनने और श्रवण करने के मात्र से ही हमारा मंगल होता है, तो स्वयं वह भगवान कितना मंगलमय होगा। जीव के समस्त दुख उस भगवान के चिंतन मात्र से दूर हो जाते हैं। जीव की वास्तविक स्थिति, वो उसकी वास्तविक स्थिति है आनंदमय। और जब भगवान के विषय में वो सोचता है, वो सुनता है, भगवान को देखने की लालसा करता है, तो सुमंगलम दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, केवल उनकी इच्छा करने से। और दूसरी क्वालिटी बताई विमुक्त संगा। विमुक्त संगा का मतलब होता है जो सब प्रकार की, विमुक्त मतलब मुक्त हो, भौतिक दशाओं से पूरी तरह मुक्त हो, संग की आसक्ति नहीं हो। यानी कि जैसे संसार में क्या होता है, हर कोई किसी न किसी के से आसक्ति होती है, आसक्ति से मुक्त नहीं होती है। और ये आसक्ति जो होती है ना, वो हमें फंसा देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक चींटी होती है ना, चींटी को गुड़ में बहुत टेस्ट लगता है, वो बोलते हैं उसको ऐसा लगता है गुड़ हो या हनी शहद हो तो उसको बहुत मीठा लगता है। वो उस मिठास की ओर बहुत आसक्त हो जाती है और वो और अंदर और भी उसका स्वाद लेना चाहती है, और भी उसका स्वाद लेना चाहती है। और एक दिन ऐसा आता है उसी में चिपक कर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो वहीं पर उसका टेस्ट लेते लेते मर जाती है। तो विमुक्त संग, संग का मतलब होता है किसी की संगति से आजाद, है ना, उसको किसी भी वस्तु की संगति की आवश्यकता नहीं हो। ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे अच्छा लगे, ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे अच्छा लगे, ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे अच्छा लगे। ये विमुक्त संग पहली क्वालिटी क्या बताए कि उसे भगवान, उस भगवान को देखने की इच्छा हो जो कि सुमंगल है, और दूसरी क्वालिटी कि भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति हो। हम क्या सोचते हैं कि हम भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते रहें, भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रखते रहें और साथ साथ में भगवान की भक्ति करें और हम भगवान को प्राप्त कर लें। बोल दिया उन्होंने ऐसे, तुम तो जंतु हो, साधारण जीव जानवर की तरह कार्य करते हो, उसको तो छोड़ो, देवता और बड़े बड़े ऋषि भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तो तुम क्या करोगे। इसके लिए ये सारी क्वालिटीज तुम्हें अपने अंदर विकसित करनी होंगी। सबसे पहले तो भगवान को देखने की इच्छा के अतिरिक्त और कोई देख कुछ भी देखने की इच्छा हृदय में नहीं होनी चाहिए। भौतिक किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और मुनयः, मुनयः का मतलब है कि जो मुनिगण हैं, जो मनन करते हैं भगवान के विषय में, जो भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, भौतिक वस्तुओं का मनन नहीं करते, मुनि उनको बोलते हैं। जो बात करते हैं तो केवल भगवान के विषय में, सोचते हैं तो केवल भगवान के विषय में, और देखना चाहते हैं तो केवल भगवान को, श्रवण करना चाहते हैं तो केवल भगवान के विषय में, और आगे चौथी क्वालिटी बता रहे सुसाधवा। साधवा का मतलब होता है जो साधना में लगा हुआ हो, और सुसाधवा का मतलब होता है जो अपनी साधना से कभी भी विलक नहीं होता है, कंटिन्यूस साधना में लगा। साधना मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको गुरु महाराज ने दिए हैं, वो सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो, वैसे तो मनुष्य बनने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, जानवरों के जो रूल्स हैं उनको तोड़ना चाहिए, है ना, जो जानवर हैं आहार निद्रा वायु मैथुन उसको हटा के उससे अलग होकर चार नियम का पालन करना चाहिए। कौन सा? मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री संग नहीं करना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। ये तो केवल मनुष्य बनने के गुण है, लेकिन यहां पर कहा है सुसाधवा, उससे बढ़कर साधना करनी है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। तो जो साधु होते हैं, सुसाधु का मतलब है वो कंटिन्यूस अपनी साधना में लगे रहते हैं। जिस प्रकार एक भौतिक व्यक्ति जैसे कंटिन्यूस उसके मन में यही होता है कि कैसे मैं अपने धन को इससे अधिक बढ़ाऊं, 1 लाख है तो 2 होने चाहिए, 1 करोड़ है तो 4 करोड़ होने चाहिए, 10 करोड़ है तो इतना होना चाहिए, मतलब थकता नहीं है वो कमा कमा कर। उसी तरह से जो सुसाधा होते हैं वो भी थकते नहीं है साधना करके, ऐसा नहीं लगता उनको कभी भी कि इतनी तो भक्ति की है मैंने, अभी 16 माला कर दी, अभी बस माला रखो, नहीं, किस प्रकार मुझे और समय मिले, मैं और अधिक जप करना चाहता हूँ, मैं और अधिक भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, जिसके मन में ऐसी लालसा। तो ये सारे गुण बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो भगवान के दर्शन करने की इच्छा रखता है उसे ये सब होने चाहिए उसके अंदर। चरंत्य लोक व्रतम अव्रणम वने, चरंत्य लोक वो कंटिन्यूस अभ्यास करते हैं, वो उनको अपने साधना के लिए कंटिन्यूस अभ्यास कर, ये वो नहीं सोचते कि ये गुण मुझ पर हावी हो रहे हैं या ये गुण विकसित हो रहा है, रजोगुण आ रहा है, तमोगुण आ रहा है, मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं आ रही हैं तो क्या करूं, अभी भोग करता हूं, नहीं, वो कंटिन्यूस अभ्यास करते हैं। किसका? लोक व्रतम, अपने वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने का अभ्यास करते हैं। अवृतम मतलब बिना किसी त्रुटि के, कोई उसके अंदर कोई अवरण नहीं आने देते हैं, कोई त्रुटि नहीं आने देते हैं,
और कहां पर जाते हैं? वने। यहां पर ये शब्द लिखा हुआ है कि वो जंगल में जाकर अभ्यास करते हैं। वैसे शास्त्रों में यही बताया गया है कि क्योंकि जब घर गृहस्थी में बंदा फंसा हुआ होता है तो फिर उससे वो भौतिक आसक्ति की इच्छा हृदय से खत्म नहीं होती है, उसमें लगा हुआ होता है, तो फिर वो अच्छे से तपस्या नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको ऐसी स्थान, वने का मतलब वास्तव में ऐसा है कि ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। ऐसा स्थान होना चाहिए कि जब हम जप कर रहे हों, जब हम श्रवण कर रहे हों, तो कोई व्यक्ति हमें डिस्टर्ब ना करे और वातावरण हमें सपोर्ट करे। वहां का जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए जो हमें भक्ति में आगे उन्नति करने में सपोर्ट करे। जैसे अब इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को अगर फैक्ट्री लगानी होती है तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? सबसे पहले देखेगा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, कोई भूमि ऐसी होनी चाहिए, कोई लैंड देखेगा जहां पर के उससे वो फैक्ट्री लगाने में सुविधाएं प्राप्त हों, है ना। वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, वहां पर उसको वर्कर्स अच्छे मिलने चाहिए, वहां पर रॉ मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए, बिजली पानी सब चीजें उसको सही तरह से सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो ही जगह पे वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा तो उसको बहुत इजी पड़ेगा। एक जगह पे ऐसी जगह पे लगाएगा जहां पर नहीं होंगी वो सारी पर्याप्त वस्तुएं तो फिर वो उन्नति नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार जो भक्ति करना चाहते हैं उन्हें भी सबसे पहले तो देखना चाहिए स्थान। वैसे तो महाप्रभु ने कहा नियमितः स्मरणे न काले, भले ही उसका कोई नियम नहीं है लेकिन यदि आपको बढ़ाना है अपनी भक्ति को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और भक्ति के लिए कहा जाता है कि वो जगह जहां पर कि पहले से ही भक्त भक्ति कर रहे हैं तो आपको बहुत साथ मिलता है। जैसे अगर किसी को शराब पीने की इच्छा है तो फिर वो चले जाए ना बियर बार में, वहां पर सब शराब पी रहे हैं तो वो इजीली उसको सही चीजें मतलब अपनी वासना पूरी करने की वो सुविधा प्राप्त होगी। उसी प्रकार यदि किसी को भजन करना है तो ऐसी जगह का चयन करना पड़ेगा जहां पर वे पहले शुद्ध भक्त भजन कर रहे होते हैं, तो शुद्ध भक्तों के साथ मिलकर हमें भजन करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, ऐसी जगह पर मंदिर में बैठकर अपना जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और अगर नहीं तो भी घर में भी एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर भगवान के शिव विग्रह हों, उस एरिया में उस रूम में वो भगवान का रूम हो और वहां पर बैठ के भले छोटा सा ही हो लेकिन वो साधना करने की स्थान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेडरूम में बैठकर टीवी के सामने बैठकर या फिर ना जहां पर किचन में बाहर खाना खा रहे हैं सब उधर, मतलब कोई ऐसा भजन के प्रति थोड़ा सिंसियर और सीरियस होकर कोई ऐसी स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर कि हमारी भक्ति बहुत जल्दी से उन्नति कर सके। हा? तो इसलिए भक्तजन हमेशा ऐसी स्थान की तलाश करते हैं जहां पर उनकी भक्ति जो है वो ज्यादा उन्नत हो। और स्पेशल कुछ डेज होते हैं और समय कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है कि कुछ स्पेशल मंथ्स होते हैं जो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। जैसे कि अभी ये दामोदर मास, कार्तिक मास चल रहा है तो उसमें कुछ अधिक नियम पालन करना चाहिए भक्त को। मतलब यहाँ पर ये है कि जितना अधिक आप तपस्या करोगे भगवान को प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक जल्दी शीघ्रता से आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो जैसे कार्तिक मास में पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने के रात्रि के चतुर्थ पहर में, जब चतुर्थ पहर कब होता है, सुबह मतलब होने वाली होती है रात को 3:30 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक चतुर्थ पहर रहता है, और उसमें जो जागता है यानी 3:30 बजे से लेकर जाग जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है। ब्रह्म मुहूर्त कहाँ तक होता है पता है? 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो 5 बजे तक स्नान कर लेता है और उसके बाद अपना भजन शुरू करता है, वो भगवत धाम में अपना स्थान सुरक्षित कर देता है। भगवत धाम में समझो उसका घर बुक हो गया है बस। तो फिर जब जाएगा तो उसका अपना घर होगा, वहां पर जाके अपना रूम फौरन से खोलेगा और बैठेगा। तो ये है कि जितना हम इन समय का लाभ लेते हैं। चरन्त्य लोक व्रतमं वरं वरं वर्णे के इस तरह से अपनी साधना को बहुत ही स्ट्रिक्टली करते हैं, कोई अवरण नहीं आने देते हैं। और आगे भूतात्म भूता, भूतात् मतलब जितने भी भूत हैं आत्मभूता, उनको अपने आत्मा की तरह समझते हैं। जैसा यानी कि सबसे इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों को अपने तरह प्रेम करते हैं, जितना जो कुछ अपने लिए अच्छा समझते हैं। सब जीवों से बहुत प्रेम करता है, सुहृद सुहृद है सबका, सुहृद मतलब सबका कल्याण चाहता है ना। जैसे भक्त जनों के श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि भक्त जो वास्तव में वैष्णव होता है उसका एक ही काम होता है कि वो दूसरों का कल्याण चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं अगर दूसरों का कल्याण करने के लिए कुछ करता हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। वो ये उसके मन में केवल ये होता है कि मैं सारे लोगों को उपदेश दूं भगवान के विषय में और श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का प्रचार करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस भौतिक स्थिति से निकाल कर उसकी वास्तविक स्थिति वास्तविक लक्ष्य के विषय में बताऊं बहुत। तो वास्तव में सही मायने में आपका सुहृद वही है जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, भूतात्म भूता सुहृद, यानी कि वो भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार रखते हैं। भूतात्म भूता यानी सबके सबसे प्रेम करते हैं। और सुहृदो वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव नहीं बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवद गीता के आदेशों का उपदेश करते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र हो जाते हैं। तो वास्तव में हमें ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए, शुद्ध भक्त जो सदैव सब भगवान के पवित्र नाम और भगवान के शास्त्र भगवान के गुण लीलाओं के विषय में बताते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीव अपनी भौतिक स्थिति से देहात्म बुद्धि से बाहर निकलकर आत्म साक्षात्कार करके भगवान तक पहुंच सकें और अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकें। ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहने से अवश्य हमारे कृष्ण प्रेम में और कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में और उसके अतिरिक्त जो भौतिक आसक्ति उसको खत्म करने में हमारी सहायता करेंगे। और कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है, जैसा कि मुक्त संग शब्द से सूचित होता है। जैसे यहाँ पर मुक्त संग बताया गया, ऐसे जीव जिन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ लेना देना नहीं रहता है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वह ऐसे भक्त की शरण में जाए। तो अगर हम लोग ऐसे भक्तों की शरण में जाएंगे तो अवश्य हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी और हम वास्तव में कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे, दर्शन करने के योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं समय गति, समय गति मतलब मेरा गंतव्य यही है, वो भगवान जो देवताओं और ऋषियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते हैं, जिनको जानने के लिए जीव को बहुत बहुत अभ्यास करना पड़ता है। सबसे पहले हृदय के अंदर उनको देखने की लालसा होनी चाहिए, वही भगवान मेरी गति, समय गति। गति का मतलब होता है गंतव्य यानी लक्ष्य। अब यहाँ पर यह समझना चाहिए कि गजेंद्र केवल ग्राह से छूटना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। बोले वही भगवान मेरा गंतव्य है, वही मेरा लक्ष्य है। गजेंद्र हाथी की योनि में भी समस्त सहारों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया है और भगवान को ये कह रहा है कि भले ही ये गजेंद्र का पाश है, और पहले बोला नहीं गजेंद्र का पाश नहीं, ये तो विधाता का पाश है, ये तो काल का पाश है। और आज बोल रहे हैं कि हाँ ये भले गजेंद्र बोल रहे हैं कि भले ही ग्रह का पाश हो या भले ही काल का पाश हो, लेकिन अब मैं इस पाश से नहीं छूटना चाहता हूँ, मैं अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, वो भगवान जो सभी जीवों, यहाँ पर बताया कि जो सभी जीवों में संभाव देखते हैं, जो सबों के लिए मित्रवत हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व
कल्याण पर चरण कमलों को पाने की इच्छुक रहते हैं। ऐसे भक्त मतलब जो भी ये बोले, वैसे तो जो मुनिगण होते हैं, जो साधु होते हैं, वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो वही भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा मैं भी कर रहा हूँ, वही भगवान मेरे भी गंतव्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।